आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 की इंग्लिश किताब की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको पैटर्न समझाऊंगी। रोज की तरह हम क्या करेंगे, पहले हम ये पोएम रीड करेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको समरी बताऊंगी इस पोएम की, और उसके बाद स्टेंजा बाय स्टेंजा मतलब, एंड आफ्टर दैट कुछ आसान से सवाल दिए गए हुए हैं उनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे तो रेन बहुत पसंद है, मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि जब पूरे समर वेकेशन, आपकी जब समर वेकेशन होती है पूरे 2-3 महीने, जब बहुत ज्यादा तपती धूप होती है बाहर, और एकदम से जब जून जुलाई में जब बारिश आनी आनी होती है, जब वो पहली बारिश आती है और जब वो मिट्टी की खुशबू होती है, वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और तो और जब भी बारिश आती है ना दोस्तों, तब हमारी मोस्ट ऑफ द पानी की समस्या, उसके बाद उसके कुछ महीनों के लिए हमारी पानी की समस्या सॉल्व हो जाती है। और टू एड टू दिस, फ्रॉग्स जो आवाज करते हैं या फिर बाकी जो भी नेचर में जो भी बदलाव होते हैं, जैसे कि ग्रीनरी सब जगह फैल जाती है ना, तो इसी वजह से मुझे रेन बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखते हैं आज के इस पोएम में हमारे पोएट हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं। रेन ऑन द रूफ। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? व्हाट थॉट्स फ्लश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? रीड द पोएम टू फाइंड आउट what the poet dreamed of while listening to the rain. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently whips in rainy tears, what a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their aired threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो ये जो poem है, ये लिखी गई है poet Coetus Kenny ने। जो glossary में बच्चों हमें कुछ difficult words mention किए गए हुए हैं, उनका मैं आपको मतलब बताऊंगी। Tingle का मतलब है short, light ringing sounds, मतलब कि जैसे बहुत ही नाजुक सा कोई आवाज। शिंगल्स का मतलब है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल यूज्ड ऑन द रूफ, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं यूज करते, मोस्ट ऑफ द फॉरेन जो कंट्रीज है वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि ये पोएट फॉरेनर है, राइट, वो इंडियन नहीं है। वूफ का मतलब है वेफ्ट, दैट इज थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूम। एरिक का मतलब है ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर, यानी कि ये एक फ्रेज है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पोएम में किसी हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ड रिफ्रेन, जिसका मतलब है रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और पोयम। यहाँ पे ये जो रेन की आवाज है उसको यूज किया गया हुआ है। और लिस्ट का मतलब है यहाँ पे इस पोयम में ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसनिंग, मतलब लिसनिंग का जो है वो शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं पहले इस पोयम की समरी जानने की। ओके, सो बच्चों बेसिकली दिस पोयम इट टेल्स अस अबाउट पोएट्स मेमोरीज, जो कि बहुत ही स्वीट मेमोरीज है उनके चाइल्डहुड के। क्या होता था उनके नाइट चाइल्डहुड में, रात को जब भी वो ऐसी आवाजें, जब भी उनको फील होता था कि क्लाउड्स आने वाले हैं अभी आसमान में, तब वो क्या करते थे, वो अपने कोजी से बेड में ऐसी रेन की आवाज सुनने कोशिश करते थे ऐसी आवाजें सुनने में, और उनको बहुत पसंद होता था ऐसी आवाजें सुनने में। क्यों? क्योंकि उन्हें बाकी लाइफ की, बाकी जिंदगी की उनको कोई ज्यादा उतनी फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि वो बच्चे थे तब, है ना, और उनको अपनी माँ की भी याद आती है, कैसी वो उनको बहुत ज्यादा कहानियां वगैरह ऐसी रातों में सुनाया करती थी। उनको ये सारे अपनी जो पास्ट मेमोरीज हैं वो याद आने लगते हैं और बेसिकली वो एक कंपैरिजन सा करने लगते हैं अपनी अब की उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो और उसके साथ किसके साथ कंपेयर करते हैं वो प्रेजेंट लाइफ और अपनी जो पास्ट लाइफ थी जब वो बच्चे थे तब की कंपेयर करते हैं। ओके तो अब हम क्या करेंगे, स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इस पोयम का मतलब समझेंगे। ओके वर्ड बाय वर्ड हम जानेंगे, तो रीड करते हैं फिर से। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पियर्स और एंड द मेलंकनी डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेनी ओवरहेड। यहाँ पे भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि हम यूज करेंगे ह्यूमिड वर्ड जो है, तो ह्यूमिड का मतलब है ऐसी कोई मॉइस्ट समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, जैसे कि आप बारिश के दिनों में महसूस करते हैं ना, हवा में ह्यूमिडिटी हम कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हवा में ह्यूमिडिटी बहुत है, इसका मतलब हवा में मॉइस्चर, हवा में जो पानी के कण है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है ह्यूमिड। ओके शेडोज हियर रिफर्स टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स विच कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ। ठीक है होवर का मतलब है HOVER, होवर का मतलब है मूव अराउंड समथिंग यानी किसी के आसपास मंडराना। मेलंकनी जो वर्ड है MELANCHOLY, मेलंकनी इसका मतलब है सैड या फिर दुखी, है ना, यानी कि दुखी डार्कनेस। राइटर कहते हैं पोएट हमारे की डार्कनेस जो है वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस होता है मुझे। ओके ब्लिस का मतलब है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। पैटर का मतलब है PATTER, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, है ना। तो कॉटेज चेम्बर का मतलब है वो कॉटेज चेम्बर अपने बेड को कहते हैं, क्योंकि कॉटेज का मतलब है बेड आसान भाषा में अगर बोले तो, और चेम्बर का मतलब है रूम, तो अपने बेडरूम को कॉटेज चेम्बर बुलाते हैं ताकि इस वर्ड्स इस राइमिंग हो सके प्रॉपरली। ओके और जस्ट एक ड्रामेटिक टच देने के खातिर। तो इस ये जो पूरा का पूरा स्टेंजा जो हमने पढ़ा उसमें द पोएट हमें कह रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, यानी कि जब भी ह्यूमिड शेडोज आती हैं यानी कि मॉइस्चर में भरी हुई शेडोज जब आती हैं, टू डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर, द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द स्काई इज फुल ऑफ दीज क्लाउड्स विच आर ऑफ मॉइस्चर लेडन आर फुल ऑफ वाटर एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन, यानी कि बारिश लाने वाले हैं वो अभी, ऐसा प्रतीत करते हैं वो क्लाउड्स। व्हेन सच क्लाउड्स होवर अराउंड इन द स्काई ओवर ऑल द स्टेरी स्पियर्स, स्पियर्स का मतलब है यहाँ पे स्काई नाइट टाइम, है ना, विच इज फुल ऑफ स्टार्स यानी कि स्टार्स बहुत ज्यादा हैं आसमान में। एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ मॉइस्चर मूव अराउंड इन द स्काई एंड द सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज विप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स विच सीम्स टू लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो डार्कनेस है उसके साथ जो बारिश आई है ना बच्चों, वो ऐसे पोएट को लगती है कि जैसे वो आसमान जो है वो रो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड है। ओके डार्कनेस पोएट को एक सैडनेस की तरह लगता है। द पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू द टीयर्स एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड इट अपियर्स एज इफ इट इज क्राइंग एंड द रेन ड्रॉप्स द टीयर्स शेड बाई इट, मतलब कि रेन ड्रॉप जो है वो आंसुओं की तरह पोएट को दिखते हैं। ही एड्स दैट इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि भले ही ये डार्कनेस है भले ही आसमान रो रहा है पर उनको ना वो एक एक ब्लेसिंग सी लगती है कि वो बहुत छोटे हैं और उनको दुनिया की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बस क्या कर सकते हैं अपने बेडरूम में जाके अपने बेड पे बेड के अंदर मतलब जाके अपने रजाई में जाके वो बस बारिश की आवाज को एंजॉय कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि वो बहुत बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं तब वो, है ना, उनको कोई टेंशन वेंशन नहीं होती। तो आगे आगे पढ़ते हैं। कॉटेज चेम्बर मीन्स जैसे कि मैंने आपको कहा था बेडरूम, एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, यानी कि आसमान से जो बारिश गिरती है ना बच्चों वो एंजॉय करने लगते हैं हमारे पोएट। क्यों, क्योंकि उनको वो आवाज बहुत ज्यादा पसंद होती है और उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो अपने बेडरूम में जाएंगे, अपने बेड में, जब वो अपनी रजाई में जाएंगे, तब उनको बाकी किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना? क्यों? क्योंकि बस उनके लिए तो वही काफी था, उनके लिए वैसे बिहेव करना वही उनकी पूरी की पूरी दुनिया होती है। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पैरा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंटेसीज इनटू बजी बीइंग स्टार्ट एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। यानी कि राइटर हमें कह रहे हैं, ओके हम ना डिफिकल्ट वर्ड्स पहले बच्चों जानेंगे, ठीक है? तो टिंकल का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था, शॉर्ट या फिर लाइट रिंगिंग साउंड, यानी कि बहुत ही नाजुक सी आवाज। शिंगल्स का मतलब रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ, जो कि यहाँ पे नहीं पाए जाते, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। एको, ECHO, एको का मतलब है रिपीटेड साउंड, यानी कि एक ही साउंड बार बार आना। ओके, और एक वर्ड है यहाँ पे बच्चों, वूफ का मतलब है वेफ्ट, जैसे कि हमने इसका मतलब भी जाना था, मतलब है थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम, है ना, यानी कि वुल जैसा। पैटर का मतलब है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। बिजी बींग जब यहाँ पे पोएट कहते हैं तो उसका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स दैट आर हियर एंड पोएट्री एंड द पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद को बिजी बी कहते हैं। ओके, यानी कि बहुत ही बिजी इंसान। तो पोएट हियर इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप, मतलब वो जब बारिश की आवाज सुनते हैं तब वो अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन माई हार्ट, मतलब कि हर एक ड्रॉप के साथ उनके उनके हार्ट में भी, उनके जो माइंड है उनका, उसमें भी रेन ड्रॉप की जो साउंड है, आवाज है, उसका एको आने लगता है। मतलब वो साउंड बार बार उनके दिल में रिपीट होने लगता है। सो वेन एवर ही हियर्स रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, ही दैट साउंड रिपीट्स इन हिज हार्ट एंड हिज ड्रीम्स। ही हैज मेनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन, मतलब वो बहुत ज्यादा, उनके जो विचार है वो बहुत ज्यादा इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में। और उनकी बहुत ज्यादा छोटी छोटी, जब वो बच्चे थे तब से उनके बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स भी हुआ करते थे। ओके, आगे जाके वो कहते हैं कि द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप क्रिएट्स मेनी मेनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड। मतलब वो जो सिंपल सी आवाज है बारिश की, वो उनके मन में बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस ला रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके सपने भी जो होंगे ना, वो इसी से रिलेटेड होंगे, इसी मतलब ये जो रेन ड्रॉप्स की आवाजें हैं रिकरिंग, उसी से रिलेटेड होंगे। ओके, सो ही सेज दैट एज ही लिसन्स टू दिस पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ ही हैज मेनी न्यू ड्रीम्स इन हिज माइंड एंड द मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक टू हिम इन द फॉर्म ऑफ द ड्रीम। यानी कि उनके पास्ट मेमोरीज के जो ड्रीम्स जो हैं, वो ड्रीम्स के हिसाब से उनके पास्ट मेमोरी जो है उनके पास अभी आएंगी। ओके, गोइंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन यर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो एर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ERE, ये ओल्ड पोएटिक वर्ड है, बहुत ज्यादा पोएट हमारे बहुत नए शैली के भी नहीं है, ये पोएम बहुत ज्यादा पुरानी है, तो उनको ये जो वर्ड्स है वो पहले के पुराने जमाने में ऐसे वर्ड्स लोग पोएम में लिखा करते थे, यूज किया करते थे, जिसका मतलब है बिफोर, यानी कि पहले। ओके, नाउ डॉन का मतलब है डे ब्रेक, यानी कि जिसको हम कहते हैं भोर, यानी कि जब भी सुबह का जो वक्त होता है, अर्ली मॉर्निंग, जिसको आप कह सकते हैं सुबह 5:30 बजे या फिर सुबह 5 बजे, भोर का वक्त हम कहते हैं ना, तो उसको, ओके उसको कहते हैं हम लोग डॉन, DAWN। ओके, रिफ्रेन का मतलब है रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोयम। यहाँ पे द साउंड ऑफ द रेन रिपीट किया गया हुआ है ना बार बार, तो इसको रिफ्रेन कहते हैं। ओके, सो हियर द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर, उनको अपनी माँ की याद आती है, यहाँ पे उन्होंने पोएम में वो मेंशन भी किया है, और उनको लगता है कि ही इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, मतलब उनको अपनी माँ की अभी यहाँ पे याद आ रही है, और तो और उनको अपनी माँ के साथ अपना बचपन भी याद आ रहा है दोस्तों। ओके, एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टैंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट इट इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज नो लॉन्गर अलाइव, मतलब उनकी माँ की याद आ रही है उन्हें, जो मतलब वो अभी जिंदा नहीं है, वो बहुत सालों पहले चल बसी थी, तो उनकी उनको अभी पोएट को हमारे याद आ रही है. ओके, इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अलॉट, शी यूज्ड टू कंसिडर हिम डार्लिंग एंड शी यूज्ड टू लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स. मतलब कि जब आप छोटे थे बहुत ज्यादा, तब आपको आपकी माँ सुलाती थी ना, वैसे ही पोएट को उनकी माँ भी सुला देती थी और उनको बहुत देर तक सोने की मतलब वो इजाजत भी देती थी. और तब जब वो बहुत देर तक सोते थे, तब उनको बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी आते थे. मतलब बच्चों को जैसे भी ड्रीम्स आते हैं, वैसे उनको भी अपने बचपन में ड्रीम्स आया करते थे. अब पोएट जो है हमारे, उनको अपनी माँ के ड्रीम्स आने लगते हैं और उनके बचपन के, अपने बचपन के उनको ड्रीम्स आने लगते हैं. ओके, सो द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम एंड ही लिसन्स टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम. मतलब उनको लगता है कि आज भी उनकी माँ उनके तरफ वैसे ही देख रही है जैसे कि जब वो छोटे थे तब देखा करती थी. द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम को रिलेटेड टू हिज पास्ट विथ हिज प्रेजेंट. दैट इज वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज रूफ. वेन एवर ही हियर्स दिस साउंड इट ब्रिंग्स द मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर. मतलब वो जब भी अभी ऐसी आवाजें सुनते हैं रेन रेन की अपने रूफ टॉप पे, तब वो एकदम से अपने बचपन में जाते हैं, अपने बचपन की यादों में वो जाते हैं, अपनी माँ की उनको बहुत ज्यादा याद आने लगती है. तो समराइज हम कैसे करेंगे बच्चों इस पोएम को? हम समराइज करेंगे कि द पोएम द रेन ऑन द रूफ टॉक्स अबाउट द पोएट्स वेरिड रिएक्शन टू द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस. मतलब कि क्या है, कैसे हमारे पोएट अपने जो रूफ, उनके रूफ में जो बारिश की आवाज आ रही है, वो कैसे उसको रिएक्ट करते, कितने डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आने लगते हैं उनके माइंड में. वो ये अपने वो माँ के बारे में सोचते हैं, एकदम से वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं, और वो और तो और वो अपना चाइल्डहुड अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ में मैच करने की भी कोशिश कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि उनका बचपन, इन अ वे वो कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि इन अ वे उनका बचपन बहुत ज्यादा सुनहरा था, जब उनको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती थी. सो ही लव्स टू लाई ऑन द बेड एंड हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम बिकॉज इट गेट्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. ही सेज दैट साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप हेल्प्स हिम फॉल अस्लीप एंड गिव्स हिम स्वीट मेमोरीज. ही हैज मेमोरीज ऑफ हिज लविंग मदर हु विल पुट देम टू स्लीप. मतलब उनको बार बार अपनी माँ की याद आने लगती है. क्यों? क्योंकि कैसे वो उनको सुलाती थी बचपन में, ये सारी चीजें उनको याद आने लगती हैं. वो ये भी कहते हैं कि अभी उनके लाइफ जितनी ज्यादा इश्यूज, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जब वो छोटे थे तब ऐसा कुछ भी उनको सोचने के लिए वो मजबूर नहीं हुआ करते थे. बस बारिश आती थी तो वो क्या करते थे, अपने बेडरूम में जाके, अपनी रजाई में घुस के, वो बस बारिश का जो आवाज है, बारिश की जो साउंड है, उसको बस वो एंजॉय करने लगते थे. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी आपका जो बुक है ना, उसके नीचे थिंकिंग अबाउट द पोयम नाम का एक सेगमेंट दिया गया हुआ है ना. तो हम लोग बहुत इजी से सवाल पूछे गए हैं, तब उनके और उनके हम जवाब हम अभी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो हमारे लिए पहला बहुत ही आसान सा सवाल है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू डिस्कस इन द क्लास. यानी कि यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हुए हैं, कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस, उसका मतलब हमें डिस्कस करना है और जॉट डाउन करना है अपनी किताब में. तो पहला वर्ड है ह्यूमिड शैडोज. मैंने आपको ह्यूमिड का मतलब क्या बताया था बच्चों, सोचो. मैंने आपको ह्यूमिड का मतलब ये बताया था कि हवा में जब मॉइस्चर होता है, यानी कि हवा में जब बारिश, कुछ पानी के कण होते हैं, दव बिंदु, तो उनको ह्यूमिड कहते हैं. और शेडोज का मतलब है परछाइयां. ह्यूमिड शेडोज, ये जो वर्ड है वो हमें क्या बताता है, तो ये वर्ड हमें ये बताता है कि देर आर शेडोज ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच बिकम वेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, दूसरा वर्ड है स्टेरी स्पियर्स. स्टेरी स्पियर्स का मतलब है द एरिया वेर स्टार अपियर्स इन अ ग्रुप इन द स्काई. यानी कि आसमान में आप जब देखेंगे तो एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे स्टार्स आते हैं, ग्रुप ग्रुप में आते हैं, जैसे कि हम सप्तर्षि भी कहते हैं उनको, है ना. हमारे हिंदू धर्म में, हमारे इंडियन कल्चर में हम क्या कहते हैं, सप्तर्षियों का तारामंडल, यानी कि 7 ऋषि जो हैं, ऋषि जो हैं वो तारों के, मतलब तारों का उन्होंने रूप लेके वो आसमान में है. तो फॉरेन कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज, उनको स्टेरिस्पियर्स कहते हैं उन जगह को. ओके, आसमान की उस जगह को वो स्टेरिस्पियर्स कहते हैं. तो दूसरा, तीसरा जो वर्ड है, फ्रेज है, वो है व्हाट अ ब्लिस, जिसका मतलब है कि ब्लिस का मतलब मैंने आपको बताया था हैप्पीनेस. तो पोएट जो है हमारे बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं, खुश मिजाज वो उनका मतलब जो नेचर है वो बन जाता है. क्यों? बस बारिश की आवाज सुन के. और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो अपने बचपन के जो इरा में, बचपन के टाइम में वो जाते हैं और वो सारी चीजें वो अभी याद कर रहे हैं, और ये सारी चीजें उनको खुशी देती है. मतलब कि जो बारिश की जो आवाज भी है वो भी उनको बहुत ज्यादा खुशी देती है. चौथा वर्ड है 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. मैं फिर से रीड करती हूँ, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. इसका मतलब है द पोएट स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग द पास्ट एंड फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट इन द रेवरीज एंड ड्रीम्स इन द रेनी वेदर. यानी कि हमारे पोएट को अपने बचपन की बहुत ज्यादा यादें जो हैं वो याद आने लगती हैं. इन यादों में एकदम से हमारे जो पोएट है वो खो जाते हैं, है ना? वो क्या, उनको क्या होता है कि अपनी माँ की भी याद आती है, उनको अपने बचपन की भी याद आने लगती है. ओके, तो फिफ्थ वर्ड है हमारे लिए 1000 रिकलेक्शंस व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. ये आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, मैं समझती हूँ, इसलिए मैं आपको मीनिंग बताती हूँ इसका. सो द पोएट रिकलेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मेमोरीज इन द रेनी सीजन. दे वीव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ द एयर थ्रेड्स. यानी कि उनको जो है, जैसे कि एक एयर थ्रेड है, जैसे कि धागे की तरह उनको ये सारी चीजें याद आने लगती है. कि हमने, आपने देखा होगा ना, जो आपका धागा होता है वो एकदम से अगर आने लगता है कपड़ों में से, मतलब ऐसे निकल के, तो वो कंटिन्यूअस होता है, वो थमता नहीं वो धागा आना. तो वैसे ही, उसी तरह से हमारे पोएट के साथ ही ऐसा ही हो रहा है. एक के बाद एक उनको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वो जो सवाल है उनके मन में वो आने शुरू हो जाते हैं. ओके, एक के बाद एक शुरू होते हैं. तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू पे. व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. यानी कि हमारे पोएट महाशय को, कवि महाशय को हमारे क्या करना पसंद है जब बारिश आती है तब? तो जवाब है, व्हेन इट रेन्स द पोएट वॉन्ट्स टू लाई ऑन द बेड इन अ कॉटेज एंड लिसन टू पिटर पैटर साउंड ऑन द ऑफ द रेन. यानी कि हमारे जो पोएट है उनको क्या पसंद है करना? सबसे ज्यादा उनको पसंद है कि जो बारिश की आवाज आए उसके बारे में वो सारी आवाजें सुनना उनको पसंद है. और तो और उनको अभी जब वो एडल्ट हो गए, जब वो बड़े हो गए हैं, तब उनको बारिश की आवाज सुनते हुए रजाई में जाना पसंद है, जैसे कि वो बचपन में किया करते थे. और उनको अपनी बचपन की जो सारी यादें हैं वो ताजा करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. तो ये सारी चीजें हमारे पोएट को पसंद है जब बारिश आती है तब. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री पे हम आते हैं. व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू. हमें कि ऐसी कौन सी बहुत बड़ी मेमोरी हमारे पोएट के मन में आने लगती है, मतलब याद, कौन सी याद उनके मन में होती है, और वो डार्लिंग ड्रीमर किसको कहते हैं यहाँ पे, है ना? तो हमारा जवाब ये होगा यहाँ पे बच्चों, कि द पोएट ड्रीम्स अबाउट हिज सिंगल मेजर मेमोरी ऑफ हिज मदर. उनके अप, आप उनको अपने माँ की याद आती है. और डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेम्बर देयर मदर लाइक द पोएट. मतलब वो डार्लिंग ड्रीमर उन सारे बच्चों को कहते हैं, उन सारे इंसानों को कहते हैं वो कभी, जो कभी कभी अपनी माँ की यादों में खो जाते हैं, उनको वो क्या कहते हैं? डार्लिंग ड्रीमर्स. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे. इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव. यानी कि बहुत तो इजी सा सवाल है ये, आप भी आंसर करोगे. तो आपको ये, आप मुझे बताओ कि पोएट क्या अभी बच्चे हैं? क्या उनकी माँ अभी भी जिंदा है? तो उनकी माँ तो अभी जिंदा नहीं है, ये तो उन्होंने मतलब उस पोएम में ही लिखा था, है ना? पर उनकी यादें उनको बहुत ज्यादा सताती है, उनकी याद उनको बहुत ज्यादा आती है. नहीं, सच है. अब आते हैं हमारे पहले पार्ट पे, मतलब सवाल के पहले पार्ट पे. इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड. ये सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बच्चों, पर इसका सवाल मैं आपको इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ कि पोएट जो है वो क्या लिखते हैं. कि पहले मैं अपने कॉटेज चेम्बर में जाया करता था, मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था. इसका मतलब है पोएट पहले जाते थे, है ना? तो अभी तो वो चाइल्ड नहीं है, अभी वो ग्रोन अप हो गए हैं, अभी वो एडल्ट हो गए हैं. ओके, तो आते हैं हमारे अगले सवाल पे. व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स मदर डिड. मतलब ये सवाल सीधे सीधे आपको है कि क्या आप जब बच्चे थे तब आपकी माँ क्या आपको सुलाती थी? भाई मुझे तो सुलाती थी मेरी माँ, मतलब वो दिन भर में वो बहुत ज्यादा काम किया करती थी और रात को जब मैं सोने के लिए जाती थी तब वो आके मुझे, होती है ना लोरियां सुनाना या फिर कहानियां सुनाना, वैसे गाने वगैरह गा के मेरी माँ मुझे सुलाती थी जब मैं छोटी थी। तो आपको भी करती होंगे माँ, अभी कुछ कुछ बच्चों को तो माँ उनकी अभी भी कहानियां सुनाती होंगी, है ना। तो आते हैं दूसरे सवाल पे, डू यू लाइक द रेन? वॉट डू यू डू वेन इट रेन स्टेडिली और हेविली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम? कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, वो पूरा मौसम है बारिश का, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं क्या कर, आपको ये बताना है कि आपको अपनी पोएम, आपको अपनी बुक में ये लिखना है कि आप क्या करते हो, मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। कि जब भी बहुत ज्यादा तेज बारिश आती है ना बच्चों, तो मुझे बारिश को देखना बहुत ज्यादा पसंद है और ना कि बारिश की आवाज सुनना। हमारे पोएट जो है वो रात को बारिश की आवाज सुनते हैं, उनको वो आवाज अपने रूफटॉप की आवाज सुनना बहुत पसंद है, बल्कि मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है। जब ऐसे बहुत ज्यादा तेज ऐसे मतलब हवा चलने लगती है, विंड चलने लगती है और उसके बाद हैवी रेन होता है, तब मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गैलरी में बैठ के बारिश को एंजॉय करती हूँ। बारिश को मैं एक्चुअल क्लोज तरीके से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बारिश को देखना। ओके तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सवाल है, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? लुक अराउंड एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, सीक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन। तो आपको याद होगा पोएट ने ये भी कहा था कि डार्कनेस उनको एक सैडनेस की तरह दिखता है। मैं आपको इस पे और कुछ अपना वर्जन बताऊंगी कि बच्चों अब देखो जब भी बारिश आती है हमारे यहाँ पे, तो मैं कहूंगी हम ज्यादा बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर मतलब जो है वो रूफ है, मतलब कि हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं जब भी हम हमारे घरों में होते हैं। बट बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे आस पड़ोस में जब हम देखने के लिए जाएं तो बहुत सारे लोग ही नहीं, मतलब इंसान ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवर, जैसे कि गाय हो गई आपके, आपके कुत्ते हो गए, मतलब डॉग्स हैं, वो बारिश में हम देखते हैं कि वो बारिश में ही नहीं बल्कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी आए या फिर कोई भी सीजन में बदलाव आए, भले ही वो धूप हो या फिर वो बहुत ज्यादा तेज धूप हो यानी कि गर्मी का मौसम हो या फिर बहुत ज्यादा बारिश आने लगे या फिर बहुत ज्यादा ठंड का मौसम हो, हम तो अपने घरों में सिकुड़ के ऐसे रहते हैं ना मतलब। पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्रीचर्स यानी कि जिंदा जो सोल्स हैं वो ऐसे होते हैं, उनको ये सारी चीजें नसीब नहीं होती। जानवर ही नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे देश में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत बूढ़े लोग भी हैं जिनको ये सारी चीजें नसीब नहीं होती। तो पोएट हमें क्या कह रहे हैं इस, मतलब ये जो सवाल है वो हमें क्या कह रहा है कि हमने खुद को फॉर्चुनेट कंसिडर करना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोजी सी बेड है, मतलब बेड ना भी हो तो भी हमारे पास सोने के लिए अच्छी जगह है, ड्राई जगह है बारिश में, है ना। हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम लोग सो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को ये सारी जो सुविधाएं हैं वो अवेलेबल नहीं होती, है ना। वो बस अपने आप को अपने कंफर्टेबल पोजीशंस में वो लोग कभी नहीं होते, वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। यही नहीं, मैं तो इसके ऊपर भी जाके मैं ये कहूंगी कि आप छोटे छोटे बर्ड्स भी देखते हो, जब भी बहुत बड़ा चक्रवात आता है या फिर बहुत बड़ी बारिश आती है, जब भी हमारे यहाँ पे बाढ़ आती है, तब ऐसे जो जीव जंतु जो है यानी कि चिड़िया हो गई या फिर कौवे हो गए या फिर बंदर फॉर दैट एग्जाम मैटर अगर हम लेते हैं, तो वो ये सारे जो क्रीचर्स है, ये सारे जानवर है, वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं ऐसी नेचुरल कैलामिटीज के बदौलत। पर पोएट हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही हमारे पास बेड ना हो, मतलब कोजी सी बेड, अच्छी सी बेड ना हो, फिर भी अगर हमारे पास ड्राई एरिया है, मतलब तो ड्राई प्लेस है जहां पे हम खुद को सेफ महसूस करते हैं, तब भी हम बहुत ज्यादा लकी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को ये सारी चीजें हैं वो नसीब नहीं होती। और तो और मैं ये भी कहूंगी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऑर्फन होते हैं, उनको अपने पेरेंट्स का प्यार जो है वो नसीब नहीं होता। तो हमारे में से कितने भी बच्चे आप में से भी बैठे होंगे जिनके आइदर ऑफ द पेरेंट या फिर दोनों पेरेंट उनके ना हो, तो आप कभी उनकी तरफ देखिए और ये महसूस कीजिए कि आपको उनको कितना ज्यादा मतलब अटैचमेंट आपको उनको देना है ना। आप उनके पास जो सुविधाएं नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको वो सारी चीजें, वो सारा जो अटेंशन है, वो सारी केयर है, वो आपने उनको देनी चाहिए क्योंकि आपके पास वो सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये बच्चों, मैं इस चीज पे इतना ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ कि अभी आप बच्चे हो तो आपको ये महसूस सकता है कि आपके टीचर्स आपको होमवर्क दे रहे हैं या फिर आपके टीचर्स आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, वो सारा इरिटेटिंग आपको लग रहा होगा। बट लेट मी टेल यू दिस कि ये सारी चीजें इरिटेटिंग नहीं होती, बल्कि ये सारी चीजें एक ब्लिस की तरह होती है। मतलब जो हमारी सुपरनेचुरल पावर है, जिसको आप भगवान भी कह सकते हो, वो हमको एक तरह से उनका आशीर्वाद होता है ये सारी चीजें, है ना? तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव गॉट। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही है आज के लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग इन। बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।